ओम शांति। सभी आनंदित हैं ज्ञान सरोवर में? सभी? हम सभी के पास बहुत शक्तियां हैं, लेकिन संसार के इस चक्रव्यूह में फंसकर, भौतिकता की इस चकाचौंध में फंसकर आज मनुष्य अपनी शक्तियों को भूलता जा रहा है। मेरा लक्ष्य होगा आप सभी को अपनी शक्तियों की याद दिलाना। हमारे पास बहुत शक्तियां हैं। मैं आज एक चीज पढ़ रहा था जो मैंने अपनी डायरी में लिखी थी। जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, यदि हम उन्हें शांत भाव से ज्ञान युक्त होकर देखें तो वो उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें समझते हैं। आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का एनालिसिस करेंगे, उन पे विचार करो, समस्याएं वास्तव में उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी वो हमें प्रतीत होती हैं। शक्तियां हमारे पास हैं, हर समस्या का समाधान हमारे पास है। सभी रियलाइज करें, सर्वशक्तिवान की संतान होने के नाते हम सभी शक्तियों से, सभी समस्याओं से अधिक पावरफुल हैं। रियलाइज करेंगे सभी, आत्मा स्वयं ही शक्ति पुंज है, पॉइंट ऑफ एनर्जी है। आप यहां आए हैं तो अपनी इस इनर पावर को, अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान कर जाएं। हम भगवान के बच्चे हैं। मैं आपके सामने अब दो चीजें रख रहा हूं। एक चीज जिसकी आप यहां चर्चा सुन रहे हैं, दूसरी वो चीज है जिसके बारे में नहीं सुन रहे हैं। मैं आपको सुना देता हूं। पहली चर्चा, आप में से जो रोज सवेरे क्लास करते होंगे, जो पहला क्लास होता है 6:30 से 7 से, तो उसमें आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान आपको मिल गया है। कल राजयोग की विधि का ज्ञान मिलेगा। मैं छोटी सी फीलिंग आपको देना चाहता हूं योग की। प्राचीन काल से ही हमारे हिंदू धर्म में, हमारे योग दर्शन में ये बात मानी गई है, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। दोनों का मिलन, इस मिलन का एक स्वरूप है हम भगवान के बच्चे हैं। हम उसे रोज परम पिता कहते हैं, कहते हैं ना, सबका परम पिता है वो, चाहे कोई आत्मा किसी भी धर्म से जुड़ी हो, वो सभी आत्माओं का परम पिता है। अब अपने से बात करें आप जरा मेरे साथ, वो मेरा परम पिता है। इसका अर्थ है वो मेरा है। रियलाइज करें, वो हमारा है, हम उसके हैं। ये बहुत सुंदर समर्पण भाव भी है, ये बहुत सुंदर उससे हमें अपना नाता जोड़ लेना भी है। अनादि रूप से हम उसकी संतानें हैं, पर ये नाता हम भुला चुके हैं। हम उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, हे प्रभु ये कर दो, ये कर दो। हम मांग करते हैं अपने परम पिता से, जबकि वो हमें कहता है तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं, जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा ही है। तुम अधिकारी संतान हो मेरी। रियलाइज करें आप ये, हम मांगने वाले न बने, हम अधिकार प्राप्त करने वाले बने। मांग मांग कर तो हमने बहुत थोड़ा सा पाया है, भगवान के पास जो भी मांगने जाएगा वो उसे कुछ तो अवश्य देगा, परंतु सब कुछ नहीं, हमें उससे सब कुछ प्राप्त करना है। तो एक आप ये काम करेंगे, यहां उसे अपना परम पिता मान लें। इसलिए आपने यहां आकर सुना होगा हम उसे भगवान कम कहते हैं, शिव बाबा ज्यादा कहते हैं, हमारा बाप निराकार पिता हमारा, हम उसकी संतान, तो उसकी बहुत सारी देन हमारे पास है। दूसरी बात जो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है आप उसे सहज रूप से स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि वो हमारी अपनी बातें हैं, हम सब की बातें हैं। देखिए, हम भारतवर्ष में देवी देवताओं को बहुत प्यार करते हैं। श्री कृष्ण की कहानियां चलेंगी, श्री राम की कहानियां चलेंगी, सभी लोग बहुत प्यार और सम्मान से सुनेंगे देखेंगे। आप सबने देखा होगा जब रामानंद सागर ने रामायण की सीरियल प्रारंभ की तो भारत में लोग सोचते थे ये रामायण की सीरियल कौन देखेगा, धर्म कहां रहा है देश में। लेकिन हम जानते हैं जब रामायण की सीरियल आती थी सड़कें खाली पड़ी होती थी। मैं भी एक दिन हैदराबाद से मुंबई आया तो मुझे एक भाई लेने आया एयरपोर्ट से। मैंने उससे पूछा आज क्या बात है, बॉम्बे में बहुत भीड़ रहती है, आज गाड़ियां नहीं चल रही, सड़कें खाली हैं। उसने मुझे जवाब नहीं दिया, आगे दिखाया एक टीवी एक दुकान पर चल रही थी, वहां हजारों लोग दूर दूर बैठ के भी देख रहे थे। कहा आज रामायण सीरियल का टाइम है सवेरे 9 से 10, इसलिए सभी लोग वो देख रहे हैं। हमारे देश में देवी देवताओं के प्रति हमारे मन में ये प्यार और सम्मान क्यों है, आज आप जरा इस गुड फीलिंग की ओर चलें। हम सब जानते हैं आत्मा का पुनर्जन्म होता है। हम जरा पीछे की ओर चलें, इस शरीर से पहले मैं आत्मा किसी और शरीर में थी, ठीक है ना, उससे पहले किसी और में, उससे पहले किसी और में, सबसे पहले जब हम आत्माएं मुक्ति धाम से इस धरा पर आए थे तो हम सचमुच देवी देवता थे। ये देवी देवता और कोई नहीं, हमारे ही पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। इसलिए जब भी हम उनके चित्रों को भी देखते हैं बाजार में भी, तो हमारे मन में उनके प्रति आकर्षण होता है। चाहे कोई नास्तिक भी हो गया हो, लेकिन उसका सिर प्यार से श्रद्धा से उनके समक्ष झुक जाता है। तो मैं आप सभी को ये बात कहना चाहता हूं, आप रियलाइज करें और स्वीकार करें, हमने अनेक जन्म देव स्वरूप में लिए हैं, हम देवों के वंशज हैं, हम भगवान के बच्चे और देवताओं के वंशज हैं, महान हैं हम। मुझे एक बात और याद आ गई, वो बहुत सुंदर है, आप सब में से किसी ने नहीं सुनी होगी, हम सब के लिए गर्व की बात है। बहुत साल पहले हो गए होंगे 35-37 साल, हमारे उधर पांडव भवन में, कल आप देखेंगे जाकर जो हमारा हेड ऑफिस है, वहां पर एक छोटे से सेमिनार का आयोजन किया गया था। चीन के राजदूत को बुलाया था दिल्ली से, चीन के एम्बेसडर को। उसने भाषण करते हुए एक बहुत सुंदर बात कही जो हम भारतवासी भी नहीं जानते। उसने कहा, सुन ले आप ध्यान से अपनी महिमा, उसने कहा हमारे चीन में ये मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करेगा तो उसका अगला जन्म भारत में होगा। हम भी सुन के हैरान कि हमें नहीं पता। किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने कही नहीं, कही चीन का राजदूत बोल रहा था। उस समय वो बात अखबारों में भी छपी थी, कुछ पत्रकार भी यहां आए हुए थे। हम सभी अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को पहचाने। यहां यही काम हो रहा है कि सभी को उनके देवत्व की याद दिलाई जा रही है। हम सब जानते हैं, हम जरा सी कोई गलती कर दें, काम धंधे में आप जरा झूठ बोल दें तो मन में क्या होने लगता है, सबको पता है ना। हमारी कॉन्शियसनेस हमको बाइट करने लगती है, हमारी इनर चेतना हमें कहने लगती है, धिक्कारने लगती है, क्यों झूठ बोला तुमने। क्योंकि देवत्व हमारे अंदर विद्यमान है, हमने अनेक जन्म देव स्वरूप में बिताए हैं। जब यहां श्री राम थे वो अकेले देवता नहीं थे, हम भी उनके साथ थे। जब यहां श्री कृष्ण थे वो अकेले देवता नहीं थे, हम सब भी उनके साथ थे। पहचाने आप सभी, और ये समय आ गया है पुनः मनुष्य से देवत्व को प्राप्त करने का। आप यहां आए हैं, सभी को अच्छा तो लग ही रहा है यहां, लेकिन मैं आपको एक रहस्य बता दूं, आप क्यों यहां आए, आपको कौन यहां लाया है। हमारी बहनों ने आपको शायद 10-10 साल से निमंत्रण दिया हो कि चलो हमारे वहां प्रोग्राम चलते हैं, आप में से कई लोग हाँ ना करते हुए आज पहुंच गए हैं। हुआ होगा ना ऐसा, बहनें हमारी थकती नहीं, हमारे भाई थकते नहीं निमंत्रण देने में। आप 10 बार ना करते हैं, 11वीं बार वो फिर पहुंच जाते हैं कि चलो। आप ये भी सोचते होंगे ये बड़े खराब आदमी है, पीछे ही पड़ गए हमारे, पर जब यहां आते हैं तो पता चलता है ये क्यों पीछे पड़े थे हमारे। आपके यहां आने के पीछे किसी मनुष्य की प्रेरणा नहीं, स्वयं परमपिता की प्रेरणा है। क्योंकि वो हम सभी को पुनः मनुष्य से देवता बनाना चाहता है। तो हमारे अंदर देवत्व भी समाया हुआ है और हमारे अंदर बहुत शक्तियां भी हैं। ये दोनों प्रकट होंगे हमारे जीवन में यदि हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें। राजयोग यही है, अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर करना, मन से उसका श्रेष्ठ चिंतन करना और बुद्धि जो हमारा तीसरा नेत्र है उसको उसके स्वरूप पर स्थिर करना, तो उसकी संपूर्ण एनर्जी हम में आने लगती है। अब मैं चलता हूं उस टॉपिक की ओर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे आज तक बहुत लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। मैं ये क्लासेस ले रहा हूं कई सालों से, पावर ऑफ थॉट, संकल्प शक्ति, और उसमें भी अपने मन की शक्तियों का प्रयोग हम कैसे करें। आपको सुनकर ही महसूस हो जाएगा हर रोग को ठीक करने की शक्ति हमारे मन में है, हर समस्या को समाप्त करने की शक्ति हमारे मन में है, हर बुराई को जीतने की शक्ति हमारे मन में है। आप एक बात से जरूर सहमत होंगे कि संसार में दुख शांति बहुत बढ़ रहा है ना। मैं ज्यादा लंबी बात न करूं, पिछले 5 सालों में उससे पहले की मुकाबले में डबल हो गया है दुख, और अगले 5 साल में हो सकता है ये 10 गुना हो जाए। इसके कुछ कारण हैं। मनुष्य अपनी वास्तविक शक्तियों को भूलकर कुछ गलत राह पकड़ चुका है। आज के संसार में घर घर में टीवी, इंटरनेट, मोबाइल फोन आप सब जानते हैं, जहां इनसे सुख मिल रहा है वहां ये समस्याओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं। क्या विचार है आपका? मोबाइल फोन हम सबके सुखों का साधन है परंतु समस्याओं को बढ़ावा भी दे रहा है। मेरे पास बहुत स्टूडेंट आते हैं, दसवीं क्लास में मेरे नंबर 95% आए थे, बारहवीं क्लास में 65 रह गए, क्या करूं मैं? मैं उनसे पूछता हूं, बहुतों की समस्या, टीवी कितना घंटा देखते हो? इधर उधर देखने लगते हैं कि सच बताएं या झूठ। मोबाइल पे कितना लगे रहते हो? इंटरनेट खोलना सिखा दिया है तो लगे ही रहते हो उस पर। इससे ब्रेन की एकाग्रता की शक्ति नष्ट हो रही है। हमें ये पता नहीं, मनुष्य को ये पता नहीं कि विज्ञान के जिन साधनों ने विकास दिया है उन्होंने ही मनुष्य के ब्रेन की शक्तियों का विनाश भी किया है। तो हमारे पास शक्तियां हैं। शक्तियां कहां रहती हैं? मन में। सभी को याद रखना है, हमारे पास जो दो चीजें हैं, मन और बुद्धि, मन में रहती हैं शक्तियां, बुद्धि में रहता है विवेक, विजडम, ज्ञान। बुद्धि हमारी धारणा शक्ति भी है। कोई व्यक्ति बहुत सहनशील है, ये सहनशीलता किस में है? बुद्धि में। किसी व्यक्ति का मनोबल बहुत बढ़ा चढ़ा है, ये मनोबल है मन में। तो हमें मन की शक्तियों को बढ़ाना है। ये काम पहले तरीका इसका हम अपनाएंगे, निगेटिव संकल्पों से, व्यर्थ संकल्पों से मन की शक्तियां नष्ट होती हैं। हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव करें, पहला तरीका। दूसरा तरीका है हम अपने मन के संकल्पों को शक्तिशाली बनाएं, और तीसरा तरीका है हम अपने मन को सर्वशक्तिवान से जोड़ दें, तो उसकी शक्तियां हम में आने लगेंगी। मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूं, राजयोग के बारे में आपके कंसेप्शंस बहुत क्लियर हो जाएंगे ये बात जानने से। हम परमात्मा से शक्तियां कैसे लेते हैं, हम उससे शांति कैसे लेते हैं, हम उससे पवित्रता और सुख कैसे लेते हैं? मांगकर नहीं कि हे प्रभु हमें शांति दो, मांगना नहीं। कैसे मिलेगी? उदाहरण ले ले एक। अब आसमान में कहीं ना कहीं सूरज तो चमक रहा है, चमक रहा होगा ना। हम जस्ट अपनी बुद्धि के नेत्र से उसको विजुअलाइज करें, बुद्धि के नेत्र को सूरज पर स्थिर कर दें, यानी उसे देखने लगे यहां से, तो क्या होगा? देखिए, मनोविज्ञान का बहुत सुंदर सिद्धांत, जिस भी ऑब्जेक्ट को, जिस भी वस्तु को या व्यक्ति को हम देखते हैं उससे हमारा कॉन्टैक्ट हो जाता है, एनर्जेटिक कॉन्टैक्ट। आप यहां बैठ के अपने घर में बैठे हुए अपने बच्चे को देखो, यहां से देख सकते हैं ना, बुद्धि से। जैसे ही आपने बुद्धि से उसे देखा उससे आपका कॉन्टैक्ट हो गया और आपकी एनर्जी उसको जाने लगी, उसकी आपको आने लगी। मैंने सूरज का उदाहरण दिया, सूरज को जैसे ही आप देखेंगे उससे आपका कॉन्टैक्ट हो गया, उसकी एनर्जी आपको आने लगेगी। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के आधार से हम दूसरों को शांति भी दे सकते हैं एक जगह बैठकर। तो परमात्मा के स्वरूप को जैसे ही हम देखते हैं, वो महाज्योति है, बहुत सूक्ष्म है, उसके स्वरूप को जैसे ही बुद्धि से देखेंगे उससे हमारा कॉन्टैक्ट हो गया, उसकी एनर्जी हमको आने लगी तुरंत। जितनी देर कोई परमात्मा के स्वरूप पर अपनी बुद्धि को स्थिर कर दे उतनी ही देर उसकी शक्तियां, शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम हमारी ओर आने लगता है। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है। आप सब में से अगर किसी ने बहुत अच्छी तरह से भक्ति को किया हो और देखा हो, तो भक्ति में एक छोटी सी चीज आपको याद दिला देता हूं, यद्यपि आजकल लोग इन बातों को ज्यादा जानते नहीं हैं। जिस हर देवी का या देवता का एक मंत्र होता है, तो मंत्र जाप करने के साथ साथ उस देवी पर, देवता पर ध्यान भी स्थिर करना होता है। अगर कोई भक्त ऐसा नहीं करता तो उसको संपूर्ण प्राप्तियां नहीं होंगी। मंत्र जाप के साथ जब देवी पर हम अपना ध्यान एकाग्र किए हुए हैं, तो उसकी एनर्जी हम में आती रहती है। अगर ध्यान एकाग्र किए बिना ही हम मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आधी प्राप्ति होगी। तो परमात्मा के स्वरूप पर हम अपनी बुद्धि को लगाते हैं, तो उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति हम में आने लगती है। इस तरह हमारे मन की शक्ति बढ़ेगी। अब आगे चलें, हम अपने मन को दो भागों में बांटेंगे, अंतर्मन और बाह्य मन। अंतर्मन को इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहेंगे, बाह्य मन को कॉन्शियस माइंड। हमारी शास्त्रीय भाषा में इस सबकॉन्शियस माइंड को ही चित्त कहते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा देते हुए पहला ही सूत्र लिखा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना यही योग है। क्योंकि हमारे अंतर मन में जो गलत वृत्तियां, जो गलत संस्कार समा गए हैं, उनको शुद्ध करना ये योग का एक मुख्य लक्ष्य है। अब आपके बहुत काम की चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं, अंतर मन और बाह्य मन। आप सबके मन में, अंतर मन में बहुत ज्यादा शक्ति है। इस शक्ति का हमें प्रयोग करना है। हमारे अंतर मन में हमारी संपूर्ण शक्ति का 90% रहता है। हमें इस अंतर मन की शक्ति का यूज करना है। देखिए, सिद्धांत समझ लेंगे सभी। जब हमारा बाह्य मन शांत हो जाता है, तब हमारा अंतर मन जागृत हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, जब हमारा अंतर मन जागृत हो जाए, तब जो विचार या विजन हम अपने अंतर मन को देंगे, अंतर मन उन्हें स्वीकार कर लेगा और वैसा ही करने की शक्ति उसमें है। ये मोटा सा सिद्धांत सभी याद रखेंगे। मनोविज्ञान में इसी सिद्धांत को बताने के लिए लंबी चौड़ी व्याख्याएं की जाती हैं। मैंने दो लाइन में आपको कहा, जस्ट रिपीट कर देता हूं। बाह्य मन जब शांत है तो अंतर मन जग गया। जब अंतर मन जग गया तो जो संकल्प या विजन हम उसे देंगे, वो उन्हें स्वीकार कर लेगा और वैसा ही करने की शक्ति उसमें निहित है। अब देखिए आगे चलें, हमारा बाह्य मन दो बार स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। कब? बोलो कब? एक, जब रात को हमें नींद आने लगती है, ठीक है ना? दूसरा, जब हम सवेरे जगते हैं। अब बहुत अटेंशन दे के सुन लेंगे। रात के समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में मैक्सिमम हीलिंग पावर होती है। हीलिंग पावर कहते हैं रोगों को ठीक करने की शक्ति। रात के समय हमारे अंतर मन में रोगों को ठीक करने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है। इसको हम यूज करें कैसे? सभी माताएं ध्यान से सुन लें, बच्चों को भी सिखाएंगे। जब हम रात को सो रहे हों, बिल्कुल नींद आने को हो, तब आप संकल्प कर दें, मैं इस रोग से मुक्त स्वस्थ हूं। जो भी रोग आपको हो, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। आपको डायबिटीज है, मैं डायबिटीज से मुक्त हूं। आपको हाई ब्लड प्रेशर है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है। अगर आप 7 दिन तक लगातार ऐसा करें तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। या तो अंतर मन की शक्ति उसे ठीक कर देगी, या अंतर मन कोई साधन बता देगा कि वहां से ठीक होगा, हम वहीं पहुंच जाएंगे। मैंने इसका प्रयोग बहुत जगह कराया है। मैं एक दो जो अनुभव हैं लोगों के वो भी आपके सामने रख देता हूं। जब हम सवेरे उठते हैं, जीवन का सबसे सुंदर समय होता है उठने के बाद 10 मिनट, और उनके जीवन का वो सबसे सुंदर समय है जो थोड़ा जल्दी उठते हैं। जो 8 बजे उठेंगे उनके लिए नहीं, जो 4 बजे उठते हैं उनके लिए सबसे सुंदर, 5 बजे 6 तक। सवेरे उठने के बाद पहले 10 मिनट हमारे लिए मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। क्या करेंगे आप? अब बहुत ध्यान से सुन लेंगे, आपके जीवन का रहस्य, अनेक समस्याओं का समाधान आप इससे करेंगे। सवेरे उठते ही जो पहला संकल्प हम करेंगे वही हमारा जीवन बन जाएगा। उठते ही आपको सोच लेना है, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत धनवान हूं। जो साधक बैठे हैं वो संकल्प कर सकते हैं, मैं मुक्त हूं, मैं स्थिर चित्त हूं, मेरा चित्त शांत और एकाग्र हो गया है। कुछ दिन करने से ही आपको बहुत सुंदर अनुभव होने लगेंगे। जो भी विचार लौकिक या अलौकिक आप करेंगे उनको सवेरे ही अंतर मन ग्रहण कर लेगा। हम बहुत अच्छी तरह समझ लें, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव पावर है। मैं आपको थोड़े से मैं एक बात कह दूं, मैं बचपन से ही इस बात की खोज में था कि ये संसार कैसे बनता बिगड़ता है। हमारी इंडियन फिलोसॉफी में इसकी बहुत सारी चर्चाएं हैं, अलग अलग चर्चाएं हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूं, मैंने शुरू में ही पढ़ लिया था कि ये संसार का खेल प्रकृति और पुरुष के मिलन से बना हुआ है। मैं इस चीज की तलाश में था कि इसके पीछे रहस्य क्या है, मुझे यहां आकर पता लग गया। आप ध्यान से सुन लें, जो कुछ हम सोचते हैं, पुरुष माना आत्मा, आत्मा का मन जो कुछ सोचता है, अर्थात हम जो कुछ सोचते हैं उसकी तरंगें चारों ओर फैलती रहती हैं। ये तरंगें प्रकृति से मिलकर ही सब कुछ निर्माण करती हैं। इसलिए हमें बहुत क्लियरली जान लेना चाहिए, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार मेरे संकल्प ही हैं। सुन लिया सभी ने? जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, सफलता या असफलता, लाभ या हानि, सुख या दुख, उस सब के जिम्मेदार हमारे विचार हैं, क्योंकि विचारों की तरंगें प्रकृति से मिलकर ही सब कुछ निर्माण कर रही हैं। इसलिए हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव पावर है, रचनात्मक शक्ति। गौर करें इस बात पर आप। इसलिए हमें बार बार वो नहीं सोचना है जो हम नहीं चाहते जीवन में, हमें बार बार वो सोचना है जो हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। इन दो लाइनों में हमारे जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, अभी मैं कहीं था तो मैं सबकॉन्शियस माइंड पे एक घंटा क्लास कराई थी, वहां पर बहुत सारे भाई बहने थे 1200। तो मैंने एक चीज कही कि आजकल डॉक्टर कह देते हैं तुम्हें शुगर हो गई, अब तो भैया ठीक होगी नहीं, गोली खाते रहो जीते रहो। तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अब तो ये रहेगा जिंदगी भर, तुम ठीक होंगे नहीं, गोली खाते रहना। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने भर दिया है कि अभी हम ठीक नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी गलती हो रही है। आप संकल्प कर दो सोते समय, मैं इस बीमारी से मुक्त हो गया हूं, और परिणाम देखना। तो एक व्यक्ति अपनी पत्नी को ले आया क्लास के बाद, उसका चेहरा बिल्कुल उदास, ऐसा जैसे उससे ज्यादा बीमार संसार में कोई नहीं है। उसने बताया कि इसके मन में ये संकल्प घर कर गया है कि मेरी डायबिटीज तो तभी जाएगी जब मैं मरूंगी। ये गलत संकल्प है। कई लोग सोचते रहते हैं मैं तो बहुत दुखी हूं जीवन में, मैं तो बहुत दुखी हूं, इसने मुझे दुखी कर दिया, इसने मेरे को मेरा सुख छीन लिया। ये सबसे बड़ी गलती हो रही है। उठते ही आप सोचो मैं संपूर्ण सुखी हूं। भगवान के बच्चे ही यदि दुखी रहेंगे तो संसार में सुखी कौन होगा। चिंतन ले लो यहां से, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत संतुष्ट हूं, मेरा जीवन समस्याओं से मुक्त है, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, मैं समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूं। ये विचार हैं सुंदर, आप इन्हें ले लें अपने जीवन में और रोज सवेरे उठकर 10 मिनट अपने को चार्ज किया करें। आप कर्म क्षेत्र पर रहेंगे सारा दिन, वहां टेंशन ही टेंशन आपको मिल सकती है। आप सवेरे अपने को चार्ज कर दें, शक्तियों से स्वयं को भर दें, तो जीवन खेल बन जाएगा, जीवन बेस्ट एंजॉयमेंट हो जाएगा, हमारे कदम सहज ही सफलता के मार्ग पर चलेंगे। आप जब घर से चलते हैं तो कुछ सुंदर विचार करके चला करें। देखिए हमारे धर्म में आप एक छोटी सी बात को जानते हैं जो सबके घरों में होती है, मकान बनाना है, नींव डालनी है तो पंडित को बुलाएंगे, कुछ मंत्र पूजा पाठ कराएंगे, शादी होनी है पंडित लोग आके कुछ अच्छी शुरुआत करेंगे, बिजनेस शुरू कर रहे दुकान खोलनी है तो कुछ विधि विधान करके फिर खोलेंगे। रहस्य क्या है, किसी भी कर्म करने से पहले जो विचार, जो स्मृतियां, जो फीलिंग्स हमारे मन में होती हैं, वो हमारे संपूर्ण कर्म पर प्रभाव डालती हैं। आप घर से कोई काम करने चले, आप पहले ही सोच रहे हैं पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं, पता नहीं ये काम होगा या नहीं, पता नहीं ये व्यक्ति मदद करेगा या नहीं, तो आपने निगेटिव संकल्प क्रिएट करके असफलता का द्वार खोल दिया। आप जब कर्म करने चले तो संकल्प करना मैं भगवान का बच्चा हूं, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे इस कार्य में जाते ही सफलता मिल जाएगी, ये व्यक्ति मुझे संपूर्ण सहयोग देगा, बहुत सुंदर अनुभव आपको होने लगेंगे। तो संकल्पों को चेंज करें। मैं एक अनुभव सुना देता हूं, एक गुजरात की माता का, पिछले साल का है। मेरे पास आई वो दूसरी माता को लेकर, और दूसरी माता ने बताया कि इसकी आवाज चली गई है और इसने 2 लाख खर्च कर चुकी है, ये अब तक बहुत दवाई कर ली लेकिन इसकी आवाज लौटी नहीं है। मैंने उसे 3 विधि सिखाई, आप सुन लें कितनी सहज भाव से उसकी आवाज लौट आई थी। 3 विधि सिखाई मैंने उसको, कहा रात को सोने के समय संकल्प कर लेना मेरी आवाज लौट आई है, सात बार संकल्प कर लेना मेरी आवाज लौट आई है। दूसरी बात मैंने सिखाई कि रोज सवेरे उठते ही एक चित्र बनाना अपने मन में, विजन बनाना। आपने देखा होगा हमारे यहाँ एग्जीबिशंस के चित्र लगे हुए होते हैं, यहाँ भी आर्ट गैलरी में हमारे भाई बहने उनपे समझाते हैं लोगों को। तो मैंने उसे कहा कि आप एक चित्र बनाना उठते ही मन में, हमारे गांव में प्रदर्शनी लगी है और आने वालों को मैं बहुत अच्छी तरह समझा रही हूँ। आवाज नहीं आती ना, तो मैं बोल रही हूँ अच्छी तरह। मैंने कहा सात दिन तक लगातार करना। तीसरा, एक बहुत सुंदर थेरेपी पानी पर हमने डेवलप की बाबा के ज्ञान के द्वारा और वैज्ञानिकों की रिसर्च के द्वारा, कि पानी पर दृष्टि डालकर सात बार संकल्प करें मैं पवित्र आत्मा हूं। आत्मा का मूल स्वरूप परम पवित्र है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पानी में पवित्र वाइब्रेशंस आ गए, उसको पी लेना। वो माता छह दिन के बाद मेरे पास आई और खुद बोलकर बताया कि मेरी इतनी आवाज लौट आई है, 60% लौट आई थी और दो हफ्ते में उसकी पूरी आवाज लौट आई। मेरे को इतने सुंदर सुंदर ये अनुभव हैं राजयोग की शक्तियों के। एक बहुत सुंदर बात आपको और कहना चाहता हूं, परसों की है, मैं बेंगलोर में था, हमने सभा में एक प्रैक्टिकल प्रयोग कराया था कि जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया है जीवन में, जिन्होंने तुम्हें सताया है, उन्हें क्षमा कर दो, सच्चे दिल से उन्हें क्षमा कर दो। बहुत लोग कर नहीं पाते हैं। हमने अपनी क्लास को तैयार किया कि तुम महान हो, तुम भगवान के बच्चे हो, तुम क्षमा कर दो, जिनसे भी तुम्हारे अंदर वैर भाव है क्षमा कर देना। दो चीजें सिखाई थी, क्षमा मांगना और क्षमा कर देना। तो देखो एक व्यक्ति का कितना सुंदर अनुभव, श्याम को ही दिन में हमने ये कराया। उसने अपने एक फ्रेंड को बहुत पैसे दिए थे, अब वो फ्रेंड उसके पैसे लौटा नहीं रहा था, दोनों में शत्रुता हो गई थी और इतना हो गया था कि ये जब उसे फोन करे तो वो फोन भी उठाता नहीं था। तो इसने जो उसे क्षमा कर दिया और दुआएं भी दी, तुम्हारा कल्याण हो, भले ही तुम मेरे पैसे न दो, तुम सुखी रहो, तुम्हें शांति प्राप्त हो, तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो। श्याम को उस व्यक्ति के 10 बार मैसेज आ गए, मेरे से जल्दी फोन पर बात करो। अभी क्लासेज चल रही थी, इसने क्लासेज पूरे होने के बाद लास्ट में उससे फोन किया कि भाई क्यों आज तुम फोन कर रहे हो, रोज मैं करता था, तुम अटेंड नहीं करते थे, क्या बात है? कहा आज दोपहर से मेरे मन में बेचैनी हो गई है कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूं और तुम्हें जल्दी फोन करूं। देखिए प्रैक्टिकल रिजल्ट तत्काल, इसने उसे क्षमा किया और उसके अंदर की शुद्ध भावनाएं जागृत हो गई। हम अपने सुंदर विचारों से दूसरों के अंदर शुद्ध भावनाओं को जागृत कर सकते हैं। बहुत ये सुंदर बात है, हमारे पास ही बहुत बहुत शक्तियां हैं, हम उन्हें पॉजिटिव करें, उनका अच्छी तरह यूज करें। मेरे पास एक और अनुभव सुना देता हूं, थोड़ा सा टाइम बचा है। दिल्ली में मैं था, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चला 2 दिन का लगातार। प्रोग्राम के एंड में एक माता मेरे पास आई और बहुत दुखी होकर मुझे कहा कि मेरी लड़की का पति 6 दिन से सोया नहीं है, उसका हाल बहुत बिगड़ चुका।
अंतर में जगालो होगा दूर अंधेरा
दुखी होकर मुझे कहा कि मेरी लड़की का पति 6 दिन से सोया नहीं है, उसका हाल बहुत बिगड़ चुका है, क्या करूं। तो मैंने कहा डॉक्टरों को नहीं दिखाया क्या? कहा 3 दिन के बाद उसको बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। पहले दिन डॉक्टरों ने उसको गोलियां दी, सवेरे भी दी, दोपहर दी, शाम को दी, नो इफेक्ट। दूसरा दिन डॉक्टरों ने उनको इंजेक्शन दिए, सवेरे, दोपहर, शाम, नो इफेक्ट। तीसरे दिन जो एनेस्थेसिया का इंजेक्शन होता है ना, ऑपरेशन में देते हैं बेहोश करने के लिए, वो दिया, नो इफेक्ट। अब वो बेचैन है, तड़फ रहा है, सारा परिवार पास बैठा है, सब सोच रहे हैं या तो ये पागल हो जाएगा या इसकी मृत्यु, क्या करूं। मैं भी जा रहा था, उसको भी जाना था, प्रोग्राम पूरा हो गया था। मैंने चलते चलते ही उसको 2 छोटी सी विधि बताई। एक तो यही कि पानी चार्ज करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, 7 बार संकल्प करना, जाके उसे पिला दो और कहना इस पानी को पीने से तुम सो जाओगे, पी लो। उसने जाते ही पानी पिलाया उसको। दूसरी विधि थी, देखिए बहुत सुंदर थेरेपी है, हमारे हाथों से एनर्जी निकलती है, जिस तरह का विचार हम करेंगे उसी तरह की एनर्जी हमारे हाथों से वाइब्रेट होती है। तो मैंने उसे बताया दोनों हाथ मलना, 7 बार संकल्प करना, मैं सर्वशक्तिमान की संतान, शक्तिशाली आत्मा हूं। हाथों से एनर्जी निकलेगी और उसके पीछे बैठकर उसके सिर पर रख देना दोनों तरफ और कहना सो जाओ। उसने वो किया और सवेरे 6 बजे आ गई और ये गुड न्यूज दिया कि वो गहरी नींद सोया हुआ है। डॉक्टरों को पता लगा ये सो गया, नर्स से पूछा उन्होंने भाई क्या दिया था क्या कुछ, नर्स ने बताया इसकी सांस आई थी इसको कुछ पिला के गई थी। और देखो पानी तो था, चार्ज कर दिया था। हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल में हाथ रख कर लोगों का रोग हर लेते थे, कुछ चीजें ऐसे ही देखकर पिला देते थे मंत्राइज्ड करके पानी को। तो ये वाइब्रेशंस हैं, ये शक्तियां हमारे पास हैं। आप बच्चों पर कर सकते हैं प्रयोग, माताओं को कहूंगा छोटे बच्चों को जब आप उठाओ उठते ही उन्हें कहना मुख से बोलो मैं बुद्धिमान हूं चरित्रवान हूं, तो उनकी बुद्धि ओपन होगी खुलेगी। आप दोनों हाथ मलकर ये संकल्प कर सकते हैं मैं पवित्र आत्मा हूं और उनके सिर पे रख दो और संकल्प करना इनसे इसकी बुद्धि का विकास हो, बुद्धि का विकास होने लगेगा। क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो हमारी एनर्जी को तुरंत ग्रहण करेंगे अपने अंदर। तो हमारे पास बहुत पावर है, हम साधनाओं के क्षेत्र में अपने जीवन को सुख शांति से भरने के लिए, अपने को महान बनाने के लिए, अपने कार्यों में सफलता पाने के लिए, अपने जीवन को विघ्नों से मुक्त करने के लिए केवल संकल्प के द्वारा इस शक्ति को यूज करेंगे। लेकिन सफलता उन्हें मिलेगी जो एकाग्र चित्त होने का अभ्यास करेंगे, जो अपनी शक्तियों में विश्वास करेंगे। बहुत बड़ी चीज है शक्तियों में विश्वास करना। डाउट बहुत होता है मनुष्य को अपने मन में। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, बाइबिल का उदाहरण है, बाइबिल से मनोवैज्ञानिकों ने लिया है। उन्होंने लिखा है कि तुम्हारे सामने जो पहाड़ है अगर तुम उस पर दृष्टि डालकर दृढ़ता से संकल्प कर दो कि ये पहाड़ 10 फुट पीछे खिसक जाए तो वो पहाड़ 10 फुट पीछे खिसक जाएगा, बशर्ते कि तुम्हारे मन में संपूर्ण विश्वास हो। ठीक है ना? लेकिन हम क्या करें, अगर हम सामने वाले पहाड़ को देखकर संकल्प करें तो संकल्प करते करते ही हमारे मन में दूसरा संकल्प भी चलेगा, भला तुम्हारे सोचने से पहाड़ खिसकेगा क्या, पहले ही डाउट रहता है। तो अपनी शक्तियों में डाउट रखना माना शक्तियां निष्फल, फिर वो काम नहीं करती हैं। जितना कॉन्फिडेंस हमें अपनी शक्तियों में होता है उतना ही ये शक्तियां सफल होती हैं। लास्ट बात आपको कहूंगा, बस यहां आप आए हैं तो एक सुंदर चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, सीख लें आप। घर घर में जो अशांति है, जो टकराव है, उसका कारण मनुष्य का ईगो, अहम। और उस अहम से हर मनुष्य ये सोचता है मैं राइट हूं। ध्यान दें आप इस संकल्प पर, हर व्यक्ति ये सोच रहा है मैं राइट हूं। दोनों ही राइट हैं, जो लड़ रहे हैं दोनों ही सोच रहे हैं मैं राइट हूं। तो जरा अपने को नम्र बनाएंगे, इस अहम को डाउन करेंगे, मैं ही सब जगह राइट नहीं होता, मैं गलत भी हो सकता हूं, और अगर मैं राइट भी हूं तो भी मुझे थोड़ा झुककर ही चलना चाहिए, तो आपके जीवन में शांति रहेगी, शक्तियां केंद्रित रहेंगी और जो कुछ आप जीवन में करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। ओम शांति।